मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के इस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पिछले कई एपिसोड से हम लोग एनर्जी पर बात कर रहे हैं, और जिसके तहत एनर्जी के जो चार चैनल्स होते हैं, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, इन पर हमने बहुत विस्तार से हम लोगों ने बात की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी बातें आप लोगों के जेहन में होंगी, स्मृतियों में होंगी, और आप लोगों में से बहुतों ने उसको महसूस भी किया होगा, और महसूस करने के बाद तो बट नेचुरल है कि उस पर यकीन कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा अधिक हो ही जाता है। दोस्तों, इन एपिसोड्स के बारे में आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं ईमेल के जरिए, मैं सचमुच उन सबको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं, और सच पूछे तो आपके ये मेल ही मेरे लिए एनर्जी का काम करती हैं। तो इस लिहाज से मुझे बहुत से मेल मिले जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि यह भी बताया जाए कि ये जो एनर्जी के चारों चैनल्स हैं, हम कैसे इनको बढ़ाएं, अपने अंदर लाएं और कैसे इनका इस्तेमाल करें। तो मित्रों, मुझे लगा कि डेफिनेटली जितनी भी बातें हमने अभी तक की हैं, जब तक यह बात नहीं की जाएगी कि कैसे इन चारों एनर्जी के चैनल्स को ओपन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इनमें इजाफा किया जाए ताकि वो हमारी जिंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल निभा सकें, बिना इस चर्चा के बात थोड़ी अधूरी ही रहेगी। उन्हीं आप सबके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैंने खासकर इस ऑडियो फॉर एक्सलेंस का जो मित्रों सब्जेक्ट रखा है, वह सब्जेक्ट इसी बात पर है कि किस प्रकार से हम अपने ऊर्जा के ये जो चारों स्रोत हैं इनको विकसित कर सकें, इन्हें ओपन कर सकें और इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, सफलता पाने में और आनंद पूर्वक जीने में कर सके। तो मित्रों, आप कह सकते हैं कि आज का जो विषय है हमारा, वो वही है, ऊर्जा के चारों स्रोतों में कैसे इजाफा किया जाए। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं खासकर इस सिद्धांत का हूं कि हर चीज के पीछे एक फिलॉसफी काम करती है, एक दर्शन काम करता है, एक विचार काम करता है, जिसे आप कह सकते हैं एक फार्मूला काम करता है। मित्रों, ये जो ऊर्जा के चार चैनल्स हैं, इनको जब हम ओपन करने की बात करते हैं, इनको जब हम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ मूल जो तीन चार सिद्धांत हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, पहले हमें उन्हें जान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कि गणित में अगर आप फार्मूले को समझ लेते हैं तो फिर उससे रिलेटेड सारे जो भी गणित हो, जो भी आंकड़े हो, आप उनका हल खुद ही निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से मुझे भी लगता है कि अगर हम इनके बारे में तीन चार जो बहुत जरूरी बातें हैं अगर उनको जान लेते हैं, जो उसके फाउंडेशन है, तो आप सब अपने अपने ढंग से अपने अपने चैनल्स में इन बातों का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मुझे यह लगती है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि कोई ये न समझे कि एनर्जी के ये जो चार चैनल्स हैं, इनमें से कोई भी चैनल उनमें खुद में मिसिंग है। यानी कि आप इस बात पर पूरा भरोसा रख सकते हैं और पूरा आपको भरोसा करना ही चाहिए कि जहां से ये चारों चैनल्स ओपन होते हैं, वो सब हम सबके अंदर नेचुरल रूप में मौजूद हैं ही, उनकी उपस्थिति है। ये नहीं है कि आपको कहीं से कुछ खरीद कर लाना है। आप इसे इस रूप में समझे तो मैं समझता हूं शायद ज्यादा आपको आसानी होगी, कि जैसे आजकल सभी घरों में गैस के चूल्हे आ गए हैं, गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर से एक पाइप जुड़ा होता है जो गैस के चूल्हे से जुड़ा हुआ है, और जो गैस का जो चूल्हा है वो चार बर्नर वाला है, उसमें चार बर्नर है, मतलब एक साथ आप चार चीजें उस पर पका सकते हैं। अब आप देखिए कि उन चारों बर्नर्स को जलाने के लिए सामने चार तरह के बटन हैं, नॉब हैं कह लीजिए या स्विच हैं। जब भी आपको जो चैनल जो बर्नर जलाना होता है उससे रिलेटेड नॉब को आप घुमा देते हैं, फिर लाइटर दिखा देते हैं, फिर वो बर्नर जलने लगता है। और यदि आप चाहें तो चारों बर्नर को एक साथ भी जला सकते हैं। मित्रों, मैं इस विश्वास का हूं कि प्रकृति ने हमें बनाया ही इस तरीके से है कि हम सबके अंदर ये चारों चैनल्स अपने नेचुरल फॉर्म में मौजूद ही हैं। आप कह सकते हैं उसके साथ क्या होगा जो व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, मान लीजिए वो विकलांग है, मान लीजिए उसकी एक आंख नहीं है या पैर नहीं है या हाथ नहीं है या मानसिक रूप से कमजोर है या इस तरह से जो भी व्यक्ति जिन्हें हम दिव्यांग अब कहने लगे हैं उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? डेफिनेटली कि जो शारीरिक रूप से वो कमजोर है। लेकिन मित्रों, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं कि व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर था लेकिन उसकी जिंदगी में उस कमजोरी की कोई काली छाया नहीं पड़ी। ऐसे एक नहीं, कई उदाहरण हैं। एक किताब तो मैंने ही एडिट की थी और उसका नाम ही था मन जिसका मजबूत, यानी कि जिसका मन मजबूत हो उसके सामने ये शारीरिक कमियां कोई मायने नहीं रखती। आप देखते हैं कि जिनकी टांग नहीं है वो नृत्य कर रहे हैं, जिनके कान जिनको कम सुनाई देता है नहीं सुनाई देता है वो गाना गा रहे हैं, मतलब अद्भुत अद्भुत चीजें। जिनकी आंखें नहीं है वो महान साहित्यकार हैं, जिनका एक हाथ काम नहीं कर रहा है, पोलियो है, वो पता लगा कि क्रिकेट का सबसे अच्छा बॉलर है, चंद्रशेखर जी का नाम आप जानते हैं। तो मित्रों, यहां आप हमें थोड़ा सा समझना इस रूप में इसे पड़ेगा कि जो शारीरिक अक्षमताएं होती हैं उनको भी आदमी ओवरकम कर सकता है। वहां हमें दूसरी एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द दिया दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब यह है कि यदि किसी का एक अंग कोई कमजोर हो गया है तो उसकी पूर्ति, उस कमजोरी की पूर्ति उसके दूसरे अंगों से हो रही है और उसके दूसरे अंगों में इतनी अद्भुत क्षमता आ गई है, एनर्जी आ गई है कि वो दिव्य हो गए हैं, मतलब असाधारण हो गए हैं। दिव्यांग का यही मतलब है। तो जहां शारीरिक अक्षमता की बात आती है वहां उसे आपको इस रूप में देखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे सामने स्टीफन हॉकिंग अभी भी जीवित है और उसके उदाहरण मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। इसलिए दोस्तों, हम सबको सबसे पहले इस बात पर अडिग रहना पड़ेगा, इस बात पर 100% यकीन करना पड़ेगा कि ये चारों चैनल्स हमारे पास हैं। शुरुआत यहां से होगी, क्योंकि यदि आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे पास ये है तो फिर आप उसके इस्तेमाल करने के बारे में कभी सोच नहीं सकते। दूसरी बात मित्रों की, अगर वो है हमारे पास तो फिर हम जान क्यों नहीं रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल कर क्यों नहीं रहे हैं, हमसे वो छुपे हुए कैसे हैं? देखिए, ये बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सी चीजें हमारे पास हैं लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है उसके बारे में हम कभी सतर्कता नहीं बरतते, वो उसको हम ग्रांटेड रूप में लेते हैं कि वो तो है तो है तो है, बस खत्म हो गई बात। जैसे सांस, सोच करके देखिए कि हमारे जीवन का आधार है, कल्पना कर सकते हैं बिना सांस के हमारी जिंदगी क्या होगी? लेकिन सांस का आना जाना हमें पता नहीं लगता और ना हम सोच समझ कर सांस लेते हैं, होती जाती है। पलकों का गिरना उठना ये भी चल रहा है, यहां तक कि रात में जब हम सो जाते हैं तब भी सांसें अपना काम करती रहती, हमें पता भी नहीं लगता कि सांस है या नहीं है, वो तो जब जाने लगती है तब घबराहट होती है कि अरे बाप रे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जा रही हैं। पानी घरों में आ रहा है, नल आ रहे हैं तो कभी पानी के आने का एहसास नहीं होता, लेकिन एक दिन पानी ना आए तब पता लगता है कि अरे बाप रे कितनी, ये तो सारा का सारा सिस्टम ही हमारा कलप्स कर गया है। तो मित्रों, एक सामान्य तौर पर यही होता है कि जो चीज हमारे पास ऑलरेडी होती है उसके प्रति हमारी समझ का भी अभाव होता है और उसके प्रति हमारी सतर्कता भी कम होती है, उसका भी अभाव होता है, क्योंकि हम मान करके चलते हैं कि ये चीजें हैं फिर हम उन्हें कभी बहुत गहराई के साथ नहीं देखते। जैसे कल्पना करके देखिए कि किसी समय में जब मोबाइल फोन आया होगा या कंप्यूटर आया होगा तो कितने आश्चर्य से हम सब उसे देखते थे, करते थे कि बाप रे कोई ऐसा फोन आ गया है कि बिना तार का है और कहीं से आप कहीं भी बात कर लीजिए, यकीन ही नहीं होता था। जब यही चीजें जब हम गीता में पढ़ते थे कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल सुना रहा है, मतलब लाइव कमेंट्री सुना रहा है, तो हम यकीन नहीं करते थे। उस समय हमारे लिए वो चमत्कार था। अब जब हमारे हाथ में मोबाइल आ गया या टीवी पर हम खुद लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी चीज हो गई, लगता है कि यार ये तो होता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो समझ है, याद रखिए वो हमेशा अपनी स्थितियों पर निर्भर करती है। और चूंकि ये चारों चैनल्स हमारे पास शुरू से हैं ही, इसीलिए हमारे पास इनके प्रति समझ का अभाव रहता है और हम उसके प्रति सतर्क भी नहीं होते, क्योंकि जब समझ ही नहीं है तो सतर्कता का सवाल ही नहीं उठता। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट जो बेसिक थ्योरी है वो आती है प्रकृति के नियम से जुड़ना। सच पूछे तो लाइफ मैनेजमेंट के जितने भी मेरी विचार हैं, जितनी भी सोच है या जो भी एक्सपेरिमेंट हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं मित्रों, वो सब के सब लॉ ऑफ नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं दरअसल नेचर को देखने की कोशिश करता हूं और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें से जीवन के कुछ सिद्धांत निकालूं, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि हम खुद प्रकृति के एक अभिन्न अंग हैं, इसीलिए हमारे हर काम प्रकृति के अनुकूल होने चाहिए या प्राकृतिक रूप में होने चाहिए। जब हम प्राकृतिक रूप में आते हैं तो ये जो प्राकृतिगत दिए हुए जो हमारे चारों चैनल्स हैं परफेक्ट रूप में काम करते हैं, अदरवाइज उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक तत्व है सरलता, अब जिंदगी है, जिंदगी बहुत सरल है, नदी की तरह बह रही है, लेकिन पता नहीं उसमें कानून, नियम, नैतिकता, धर्म, परंपरा, अपेक्षा, पता नहीं क्या क्या चीजें करके उसे हमने ढेर सारा जटिल बना दिया है। अब जब हम सरलता को जटिलता में कन्वर्ट कर चुके हैं तो डेफिनेटली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, जो नेचर ने हमारे अंदर रखे थे, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होंगे ही, और वही हो रहा है। हम अपनी सरलता और अपनी सहजता को खोते चले जा रहे हैं। सहजता आर्टिफिशियलनेस से खो जाती है। हम अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छी सभा हो और या मीटिंग हो रही हो तो आपको उसमें एक तरीके से हंसना मना है, अघोषित घोषणा है वो कि आप हंस नहीं सकते, खिलखिला करके, वो एक तरह से अभद्रता मानी जाएगी। तो वहां हमारी बहुत सी चीजों की सहजता गायब हो जाती है। तो हम अपनी सरलता को भूल चुके हैं, हम अपनी सहजता को भूल चुके हैं। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है इंटरलिंकिंग, क्योंकि जो प्रकृति काम करती है वो आइसोलेशन में काम नहीं करती, वो अकेले काम नहीं करती, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें ढेर सारी चीजें एक साथ जुड़कर किसी एक घटना को अंजाम देती हैं। उसमें हजारों लाखों चीजें होती हैं, हमें पता नहीं लगती हैं, कुछ दिखाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं उन्हें हम समझ लेते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देती उनका रोल बहुत होता है किंतु हम समझ नहीं पाते। तो इस तरीके से प्रकृति में इंटरलिंकिंग या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज्यादा है। हम जब अपनी लाइफ में काम करते हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर नहीं चलते, हम एक एक चीज को लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम फिजिकल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि फिजिकल एनर्जी तब तक हम काम नहीं कर सकेंगे जब तक उसके साथ मेंटल एनर्जी कंबाइंड ना हो? मतलब ठीक है, मैं शरीर के रूप में काफी स्वस्थ हूं, मेरी एनर्जी परफेक्ट है, मेरा डाइट सिस्टम बहुत अच्छा है, मसल्स बहुत वीक हैं और मैं बहुत पहलवान हूं, मैं बहुत अच्छा मुक्केबाज बन गया हूं क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मैं वीर सैनिक हूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरी मानसिक कमजोरी है तो पता लगेगा कि छोटी छोटी चीजों में भी मैं घबरा रहा हूं। एक सामान्य से आदमी से लड़ने में भी मुझे डर लग रहा है, लड़ने में मतलब मैं एक थोड़ा सा निगेटिव उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन इसको इस रूप में मत लीजिएगा। लेकिन अगर कोई सैनिक है, कोई वीर योद्धा है, तो बट नेचुरली कि लड़ना उसका काम है, लेकिन अगर वो मानसिक रूप से कमजोर है तो वहां वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। जैसे कि अर्जुन महाभारत युद्ध के पहले दिन असफल होता है और फिर कृष्ण उसको समझाते हैं। तो यहां हमारे पास फिजिकल एनर्जी है लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटल एनर्जी से जुड़ी हुई है। फिर ये मेंटल एनर्जी आपके इमोशनल एनर्जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक आप इमोशनली अपने को ब्रॉड नहीं करेंगे तब तक ये मेंटल एनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से काम नहीं करेगी। और फिर ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो एक तरह की अलग किस्म की स्पिरिचुअल एनर्जी का जन्म होता है। तो मित्रों, आप देखेंगे कि सारी इंटरलिंकिंग है। तो नेचर इंटरलिंकिंग के सिद्धांत से काम करती है। ये कुछ प्रकृति के ऐसे नियम हैं जिससे प्रकृति बनी है। प्रकृति लगातार अपने को बढ़ा रही है, आगे भी ले जा रही है। प्रकृति मजेदार बात है कि बनी है और लगातार परिवर्तित भी हो रही है। प्रकृति में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, एक पल के लिए भी कोई चीज स्थायी नहीं है। उसके अंदर इतनी हलचल है कि हर सेकेंड, हर पल उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। ये बात अलग है कि उन परिवर्तनों को हम पकड़ नहीं पाते या वो इतने सूक्ष्म रूप में होते हैं कि बहुत लंबे अंतराल के बाद वो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो मित्रों, ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जब आप इन एनर्जीज पर काम करेंगे तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको परिवर्तन तुरंत दिखाई देने लगेंगे। परिवर्तन होंगे, वक्त लेंगे और फिर ये परिवर्तन जो अंदर से हो रहे हैं आपके सामने परिणाम के रूप में दिखाई देंगे। वो आपको परिणाम देंगे, लेकिन उसमें धैर्य की जरूरत होती है क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वो बहुत ही स्लो मोशन में होती हैं। तो दोस्तों, ये तीन चार कुछ बेसिक थ्योरी हैं जो लॉ ऑफ नेचर से गवर्न होती हैं। मैं उन्हें यहां एक बार दोहरा रहा हूं, फिर से आप इस पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि हमारी आस्था होनी चाहिए कि ये जो चारों एनर्जी के चैनल्स हैं ये सब हमारे पास नेचुरल तरीके से मौजूद है, इनमें से कोई भी हमारे पास लैकिंग नहीं है। ये बात अलग है कि हम उसे अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वे हमारे पास हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि चार बर्नर वाला एक गैस चूल्हा हमारे पास है और उसका कनेक्शन भी ऑलरेडी किसी न किसी गैस सिलेंडर के साथ है, लेकिन सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी, उसके नॉब को हमें इस्तेमाल में लाना होता है। इसके बाद मित्रों, तो जब ये चीजें हैं तो हमारे हम जानते क्यों नहीं है, तो एक बहुत ही साधारण सी बात है कि जो चीज हमारे पास नेचुरली अवेलेबल होती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं तो इसलिए उसके प्रति सतर्क भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो प्रकृति के जो नियम, प्रकृति से हमारा जुड़ाव होना चाहिए, प्रकृति के नियमों को देखते हुए अगर हम अपने जीवन में उन चीजों को अप्लाई करेंगे तो हमारी ये चारों चैनल्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगती हैं, जिनमें सरलता और सहजता सबसे ज्यादा मायने रखती है। सरलता और सहजता का मतलब ही है प्रकृति से जुड़ाव होना। और नेक्स्ट है दोस्तों कि ये जो प्रकृति काम करती है वो इंटरलिंकिंग की थ्योरी पर काम करती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से काम करती है और उसी अप्रोच से हमें भी अपनी चीजों को देखना, समझना और करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं एनर्जी के चारों चैनल्स पर और इसके लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत ही व्यावहारिक हैं और बहुत ही सामान्य किस्म की हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई आपको बड़े हिमालय की कंदराओं में जाकर के कुछ दिनों तक कोई मेडिटेशन करना है या कुछ बहुत बड़ा त्याग करना है, व्रत उपवास करना है या कोई प्राणायाम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जीवन को बहुत ही सहजता के साथ लेता हूं और सच पूछे तो मैं गुरु गोरखनाथ जी के इस सिद्धांत को बहुत ज्यादा मानता हूं कि खेली खाई करबो ध्यान, कि मैं खेलता रहूंगा तब ध्यान करूंगा, मैं खाता रहूंगा तब ध्यान करूंगा, मतलब ये कि सारी चीजें मस्ती में होती रहेंगी। तो मैं लगभग उसी तरीके की चीजें अब आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल एनर्जी पर। देखिए, ये जो शरीर है, ये शरीर साधन है, अगर ये नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो कुछ नहीं है। शरीर के प्रति हमें हमेशा बहुत अधिक संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील होने का मतलब, संवेदनशील शब्द को यहां से हटा सकते हैं, बहुत ही जिम्मेदार होना चाहिए, इसे हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी है वो इसी में है। प्रकृति ने हमको एक शरीर दे दिया है, चाहे वो कमजोर शरीर है, हृष्टपुष्ट शरीर है, जैसा भी है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, जैसा भी शरीर है उसने दिया है, ये तो प्रकृति की देन हो गई। अब उसने जैसा भी दिया है हम उसको फिर ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, जहां तक उसकी सीमा है उतने बेहतर तो हम उसे कर ही सकते हैं। अब इस शरीर को सही करने के क्या तरीके हो सकते हैं? मित्रों, ये बहुत सिंपल सी बात है। शरीर कितना महत्वपूर्ण है, आप कभी पतंजलि को आप पढ़ें जिन्होंने योग का इतना बड़ा सिद्धांत हमारे दुनिया देश को दिया है और भारत ने अब इस योग को देश के माध्यम, अपने ही देश के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला दिया है और आप जानते हैं कि यूएनओ ने इसको एक्सेप्ट करते हुए एक विश्व योग दिवस तक घोषित कर दिया है। तो पतंजलि ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो पहुंचते तो समाधि तक है, मेडिटेशन तक है, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी ध्यान धारणा समाधि तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उन्होंने योग का सिद्धांत दिया। जो उन्होंने फिजिकल जो फिटनेस के लिए जो बातें बताई हैं उसको हम योग कहते हैं, ताकि आप जब तक, ताकि आप फिजिकली फिट हो सकें। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तब तक फिर हमें दूसरी चीजों के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहां फिजिकली फिट होने का मतलब फिर आप मत कहिएगा कि स्टीफन हॉकिंग तो फिजिकली फिट नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो एक अलग तरह की चीज है। मैं एक आपको एक सिस्टम में ले जा रहा हूं, एक सामान्य तरीके की जो चीज है, मैं राजपथ की यात्रा करवा रहा हूं, मैं जटिल पगडंडियों और जटिल गलियों में आपको नहीं ले जा रहा हूं, है ना, वो अपवाद स्वरूप होते हैं और उनकी भी बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं, इससे अलग नहीं है। लेकिन अगर मैं उनके उत्तर यहां देने लगूंगा तो फिर हम राजमार्ग को छोड़ करके फिर दूसरी पगडंडियों में भटकने लगेंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। पतंजलि तक ने कहा कि स्वस्थ शरीर चाहिए। अब आप देखिए कि स्वस्थ शरीर के लिए क्या चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, नो डाउट भोजन, वो तो उसका ईंधन ही है। अब ये जरूर है कि आप भोजन में क्या लेते हैं। देखिए, जिन चीजों के साथ हम जिंदगी भर चल सकते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा भोजन होता है, सबसे अच्छा पेय पदार्थ होता है। हमारा भोजन सात्विक हो, सात्विकता का मतलब मैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन से नहीं जा रहा हूं, मतलब जो हमारे पेट के अनुकूल हो, हमारे वातावरण के अनुकूल हो, हमारे शरीर को जो सूट करता हो वह भोजन हो। बट नेचुरल है कि जो बहुत मसालेदार और बहुत तली चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं, कभी कभी की बात अलग होती है, लेकिन हमेशा खाने की चीजें ये नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि जिनके साथ हम लंबे समय तक निभा सकते हो, पहला है भोजन, इसके बाद है एक्टिविटीज, कर्म, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो बट नेचुरल है कि हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। हमेशा हमें कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना ही चाहिए। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि हम डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटीज में इस तरह के कर्मों को शामिल कर सकें। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलता है तो आप लिफ्ट को छोड़ दीजिए, थोड़ी दूर अगर आपको पैदल चलने का मौका मिलता है तो आप बाइक को छोड़ दीजिए। तो कोशिश कीजिए कि ताकि शरीर हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहे, कुछ ना कुछ श्रम करता रहे। और इसके बाद दोस्तों दिनचर्या, हमारी जो डेली का रूटीन है वो देखें हम कि नेचर के साथ कितना परफेक्ट बैठ रहा है। जैसे कि कितने बजे हम सोएं, उसका संबंध सूर्य से है, और कितने बजे उठें इसका संबंध भी सूर्य से है, क्योंकि वो नेचर के साइकिल को सूर्य जो है ना वो कंट्रोल करता है। हम जितना ज्यादा नेचर के साथ चलेंगे, बट नेचर है कि हमारी जो शारीरिक क्षमता है, जो शारीरिक ऊर्जा है, उतनी ज्यादा परफेक्ट रहेगी। और अगर हमारी शारीरिक ऊर्जा परफेक्ट रहेगी तो बीमारियां बहुत दूर उससे रहेंगी। तो ये मित्रों फिजिकल एनर्जी की बात थी, और भी आप बहुत सी चीजें जानते हैं, मतलब मैं मेन चीजें आपको केवल बता रहा हूं। दूसरा है मेंटल एनर्जी। अभी मानसिक शक्ति कहां से आएगी, देखिए जो मैं मानसिक शक्ति की बात कर रहा हूं वो जीवन के क्षेत्र की मानसिक शक्ति से की बात कर रहा हूं मैं। जैसे एक साइंटिस्ट है उसके पास एक अलग तरीके की मानसिक क्षमता है ना, एक मैथमेटिशियन है उसके पास एक अलग तरीके की मानसिक क्षमता है। मैं उसकी बात यहां नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, आप उसको लेकर के चलें। नो डाउट दोस्तों कि अगर आपको सही में अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करना है तो आपको एक्टिविटीज में शामिल होना चाहिए, इवेंट्स में शामिल होना चाहिए, ऐसी चीजों में शामिल हो, भले ही उसमें आपको स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, वो जीवन के स्ट्रगल हो, दिमाग के स्ट्रगल हो, मतलब दिमाग को सोचना पड़े, दिमाग को विचार करना पड़े, चिंतन करना पड़े, उसको डिसीजन लेना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए दिमाग थोड़ा सा एक्टिवेट होगा, फिर जब आप उस पर विचार करना शुरू करेंगे तो दिमाग और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्यों, मैथमेटिक्स हमारे दिमाग को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। जैसे आप पहेलियां सॉल्व कीजिए तो आप देखिए कि दिमाग कैसे एक्टिवेट हो जाता है, पजल आप सॉल्व कीजिए जो अखबारों में आते हैं तो आप देखिए कि दिमाग कैसे एक्टिवेट हो जाता है। समस्याएं आती हैं तो भागिए मत या दूसरों के ऊपर मत छोड़ दीजिए, जूझिए, हल करने की कोशिश कीजिए। ये एक मौका है जब आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करा सकते हैं, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो संवेदनशीलता है वो बढ़ेगी और सहनशीलता भी बढ़ेगी। संवेदनशीलता और सहनशीलता में कोई विरोध नहीं है, ये हम बातचीत में हमने ये समझ लिया है कि दोनों में विरोध है। संवेदनशीलता सच पूछे तो सहनशीलता को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, वो आपको कमजोर नहीं करती। तो जब आप लगातार फाइट करेंगे, स्ट्रगल कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो दिमाग की ताकत जो है मजबूत होती है, एक मेंटल एनर्जी पैदा होती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है खिलाड़ियों की आत्मा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्योंकि वो लगातार हारता है, जूझता है, फिजिकली कोशिश करता है। सोच करके देखिए खिलाड़ी की जिंदगी सच पूछिए तो कितनी ज्यादा जद्दोजहद से भरी हुई होती है। तो वो चीज हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाती है। और नो डाउट दोस्तों कि हम सबको लॉजिक माइंड के लिए कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों के हम एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें। और इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे आप पसंद करें या ना करें, लेकिन विज्ञान की मूलभूत जानकारी हम सबके पास होनी ही चाहिए। इसीलिए आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखिए कि 10th तक साइंस रखा हुआ है, सभी के लिए साइंस रखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 10th तक की साइंस में आप बेसिक साइंस समझ जाएं। याद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट फैसला करते हैं कि आगे जाकर के कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, वो साइंस को किनारे कर देते हैं कि किसी तरह से ठीक है पास हो जाएंगे, काम चल जाएगा। नहीं, साइंस को आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब आप साइंस समझते हैं तो ये साइंस की बात नहीं है, ये लॉजिक माइंड की बात है, क्योंकि वो समझ आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल बनाती है। और जब आपका दिमाग लॉजिकल होगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं, फिर आप उनमें डूब नहीं जाएंगे कि अरे बाप रे अब क्या करें, कैसे हुआ। आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे, उसका आप विश्लेषण कर सकेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में आप उसे बांट कर देख सकेंगे। और जब आपके पास समस्या की समझ आ जाएगी तो आप देखिएगा समस्या का निदान तो खुद समझ में आ जाएगा। मुश्किल तो यह होती है कि समस्या समझ में नहीं आती और बिना समझे ही हम उन तरीके से समस्याओं का समाधान करने में लग जाते हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल अब तक होता रहा है। अरे भैया, जो तरीका आज से 20 साल पहले इस्तेमाल होता था अब वो तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि 20 साल में चीजें बहुत बदल गई हैं और जीवंत समाज तो इतना जटिल होता है, उसमें तो इतने ज्यादा परिवर्तन होते हैं कि अब पुराना वो जो फार्मूला है वो आज में काम नहीं करेगा। लेकिन हम ये बात इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे पास लॉजिक माइंड का अभाव होता है। तो दोस्तों, विज्ञान की इस तरीके से पढ़ाई हम सबके पास होनी ही चाहिए, और एक बार समझ विकसित हो जाने के बाद फिर उसका हमें डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करना चाहिए और चीजों को फिर एनालाइज करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी मेंटल एनर्जी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद मित्रों, नेक्स्ट है इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी, इमोशंस सबके पास होते हैं, ये भी जन्मजात है और आप सब जानते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही रोता है, तो ये रोना कहां से आया है? मां को ढूंढता है, ये मां को क्यों ढूंढता है? तो ये इमोशनल एनर्जी हम सबके पास बाई बर्थ होती है। लेकिन मित्रों, मुश्किल ये होती है कि जो इमोशनल एनर्जी है ये बेसिकली एक तरह से बाढ़ की तरह होती है, पानी के बहाव की तरह होती है। तो इसलिए इसका आप सही इस्तेमाल कर सके इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसे कंट्रोल करें। जैसे आप देखें कि पानी बह रहा है, अगर आपको उससे बिजली निकालनी है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस पानी को बांध में इकट्ठा करते हैं, फिर उस पानी से बिजली निकालते हैं। मतलब पानी को सबसे पहले आपने कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद उसको एक सिस्टम में ला करके और गिराना शुरू किया, और फिर वो वही पानी जो पहले बाढ़ का कारण बन सकती थी अब वो बिजली का कारण बन गई है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कंट्रोलिंग द इमोशंस। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो जिस तरह से बाढ़ का पानी बिजली में कन्वर्ट हो जाता है, तो इमोशंस आपके ऑटोमेटिक ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट मित्रों, प्रेम के क्षेत्र में क्या होता है? प्रेम एक इमोशन है, एनर्जी भी है, डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी और आपको बहुत उठा देने वाली एनर्जी। अगर आप प्रेम को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, अब आप मत कहिएगा कि साहब प्रेम कोई कंट्रोल करने की चीज है क्या, वो फिर एक अलग बात हो जाएगी, है ना। उस पर उसके भी जवाब है लेकिन यहां भटकाव हो जाएगा, मैं उसको लेकर के नहीं चल रहा हूं। लेकिन ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें प्रेम को एनर्जी में कन्वर्ट करके उन लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर ली। अदरवाइज हमारे सामने देवदास भी एक पात्र के रूप में है, भले ही वो साहित्यिक पात्र हो लेकिन एक करेक्टर है जिसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो प्रेम तो सभी में था लेकिन एक ने अपने आप को खत्म किया, दूसरों ने पता नहीं कहां से अपने आप को कहां पहुंचा दिया। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ उसको आप थोड़ा सा पढ़ करके देखिए, टीकों का कैसे आविष्कार हुआ है उसको आप पढ़ करके देखिए, तो आपको बड़ी अद्भुत चीजें जानने को मिलेंगी। तो कंट्रोलिंग द इमोशंस, ये इससे आप इमोशनल को, अपने इमोशंस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप इमोशंस को एनालाइज करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि इमोशंस के की सच्चाई आपको समझ में आने लगेगी। इमोशंस की सच्चाई का मतलब है इसमें ट्रुथ कितना है, सच कितना है, गलत कितना है। और जैसे ही आपको सच और गलत का आभास मिलेगा वैसे ही आप इमोशंस को कंट्रोल में अपने लाने की स्थिति में आ जाएंगे। जो फालतू की चीज है, जो थोथी चीज है, उन्हें आप निकालने लगेंगे। जब आप उनको निकालने लगेंगे और इमोशंस की रियलिटी आपकी पकड़ में आ जाएगी, तब आप देखेंगे कि इमोशंस के साथ जो आपका व्यवहार है वो बहुत ही परफेक्ट होने लगेगा। अदरवाइज तो इमोशंस के हम तो ग्रिप में आते हैं ना, थॉट्स के ग्रिप में नहीं आते जितना कि हम इमोशंस के ग्रिप में आते हैं। और इमोशंस के ग्रिप का सबसे खतरनाक बिंदु यह होता है कि उस समय हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं होती, हमारे पैरों के नीचे दलदल होती है या पानी होता है। फिर हम डूबते ही चले जाते हैं। तो जैसे ही आप एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि इमोशंस जो जिस जो आपके पैरों के नीचे जो दलदल है वो धीरे धीरे सूख करके एक अच्छा आपको धरातल प्रोवाइड कर देगी, फिर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप कितना भी ऊंचा जंप लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो इमोशंस है आपके लिए शक्ति में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों इसी इमोशंस इमोशनल एनर्जी का, वो है लिबरेटिंग द इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कितना लिबरेट कर पाते हैं, कितना उदात्त बना पाते हैं, कितना उठा पाते हैं। सूफियों ने क्या किया है, सूफियों ने प्रेम को ही, इश्क को ही ईश्वर के इश्क में कन्वर्ट कर दिया। रंग दे मोहे गेरुआ, ये क्या है, रंग दे मोहे गेरुआ, गेरुआ वस्त्र तो गेरुआ रंग एक तरीके से प्रेम का ही रंग है। तो कह रहा है कि मुझे बिल्कुल प्रेम में रंग दो, तो ये तो एक सूफियाना अंदाज है। वो व्यक्ति से शुरू हुआ प्रेम है और ईश्वर तक वो पहुंच जाता है, तो ये लिबरेट हो गया। एक व्यक्ति का प्रेम पूरे की पूरी दुनिया के प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिबरेट हो गया। तो क्रोध जैसे इमोशंस को आप कर सकते हैं। राम ने क्या किया, राम ने अपने क्रोध को लिबरेट करके ही तो राक्षसों पर प्रण किया कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तो उन्होंने अपने क्रोध को लिबरेट कर दिया। सारे इमोशंस को लिबरेट किया जा सकता है, स्वतंत्र किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि फिर पूरे अंतरिक्ष ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो आपके पास आने लगती है। फिर आपके जैसे ही अपने इमोशंस में दुनिया के इमोशंस जुड़ते हैं या जितने ज्यादा इमोशंस जुड़ते चले जाते हैं, आपकी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो मित्रों ये इमोशनल एनर्जी की बात थी। अब मैं अंतिम बात पे आता हूं स्पिरिचुअल एनर्जी पर। और दोस्तों स्पिरिचुअल एनर्जी पर मैंने इससे पहले के एपिसोड में भी आप लोगों से काफी कुछ बातें शेयर की थी, उसमें बहुत सी चीजें दोहराने जैसी ही होंगी। कुछ चीजें मैं आपसे एक बार फिर से शेयर करना चाहूंगा। देखिए जो इमोशनल जो स्पिरिचुअल एनर्जी है बेसिकली ये एक मन की स्थिति है, या आप कह लीजिए कि विचारों की स्थिति है, या आप कह लीजिए कि चेतना की स्थिति है, या आप कह लीजिए आत्मा की स्थिति है। ये सभी बिल्कुल एक तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इनमें अंतर भी नहीं है। जिस शब्द के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं आप अपने लिए उस शब्द को चुन लें। मैं अपने लिए चेतना शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता हूं, ये कॉन्शियस है। अब ये एक शीशे की तरह कितना साफ है, मैं पिछली बार भी आपको ये उदाहरण देकर के बता चुका हूं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये सच पूछे तो ये बियॉन्ड द लॉजिक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल इलॉजिकल है, यानी क्वांटम फिजिक्स में इसके लॉजिक ढूंढने की कोशिश की जा रही है और चीजें मिल भी रही हैं। जैसे कि अभी अभी आपको आश्चर्य होगा, कुछ ही दिनों पहले ही, मतलब एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, जब अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि उसने ग्रेविटी वेव्स ढूंढ ली हैं, लीजिए गुरुत्वाकर्षण की भी तरंगे होती हैं, और इसने अभी पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। अब आप कल्पना करके देखिए कि वो वेव्स जो 1.3 बिलियन ईयर्स से दो ब्लैक होल्स के टकराने से जो जनरेट हुई थी, अब वो धरती पर आई है सवा अरब सालों के बाद। सोच करके देखिए कि अंतरिक्ष कितना विशाल है। तो नई नई खोजें हो रही हैं, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो अदृश्य है, जिसे हम परालौकिक कहते हैं, अभौतिक कहते हैं, ईश्वरीय कहते हैं, जो भी अलग अलग नाम देते हैं, उसके भी वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे हैं और वैज्ञानिक उत्तर भी मिल रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन के संदर्भ में केवल हमको करना यह होता है कि हमारा ये जो कॉन्शियस है, इस कॉन्शियस को हम कैसे उसके अनुकूल बना पाते हैं। जैसे कि एक टेलीविजन का सेट है या एक रेडियो का सेट है, तो आपको रेडियो में अगर गाने सुनने हैं तो उसमें मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि वो जो वेव्स उसके आसपास में जो मौजूद हैं उनको, उन तरंगों को पकड़ ले। जैसे ही आप रेडियो को ऑन करते हैं वो उन्हें पकड़ लेती है, फिर जब आप चैनल बदलना होता है, स्टेशन बदलने होते हैं, तो जब आप घुमाते हैं तो स्टेशन बदलते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी भी जो चेतना है वो आप कह लीजिए कि हजारों लाखों बैंड वाले एक रेडियो की तरह है या एक टीवी की तरह है, जिसको हम भी कनेक्ट करना चाहते हैं वहां से वो कनेक्ट हो जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किन चीजों को कनेक्ट करना चाहते हैं, और इसी पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों हमारा मन जितना सरल होगा, हमारा मन जितना सहज होगा, सच पूछिए तो स्पिरिचुअलिटी की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अभी भोपाल में हम लोग कुछ ही दिनों पहले श्री हंस राज हंस जी की सूफियाना जो गीत थे वो सुनने गए थे सूफियाना, तो उसमें उन्होंने एक लाइन की कही थी जिसका अर्थ ये था कि हे मौला, ये जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, इनको थोड़ी सी नादानी दे दे। तो वो जो नादानी देने की बात है वो मूर्खता देने की बात नहीं, मतलब सरल और सहज मन दे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरल और सहज मन एक तरफ होता है और ईगो दूसरी तरफ होता है। इसे ही आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मुझे ईगो लेस कर दे। जिस दिन आप ईगो लेस हो जाएंगे, जिस दिन आप अहम से परे हो जाएंगे, उसी दिन मन ऑटोमेटिक सरल और सहज हो जाएगा, या कह लीजिए कि सरल और सहज मन जब तक रहेगा तब तक उसमें ईगो आ ही नहीं सकता। तो सरल और सहज मन चाहिए, जिसे आप कह लें कि ईगो लेसनेस चाहिए। फिर आपके मन में एक आस्था का भाव होना चाहिए, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, आप जो भी कह लें, क्योंकि जो मन आस्थाओं से नहीं भरा होगा वो फ्रस्ट्रेटेड मन होता है, उसमें उसको टुकड़े टुकड़े में वो बिखरा हुआ होता है। लेकिन जो आस्था का मन होता है वो बहुत ही जुड़ा हुआ मन होता है, उसमें बड़ी गहराई होती है, समुद्र की तरह बड़ी शांति होती है, वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं होता है। तो आस्था झूठी ही सही, लेकिन आस्था भरा हुआ मन सच पूछे तो स्पिरिचुअलिटी एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। प्रेम से भरा हुआ मन, क्योंकि प्रेम का तो मतलब ही है जुड़ना, और जो इस एनर्जी अंतरिक्ष में घूम रही है, अगर आपको उसे जोड़ना है तो अपने अंदर वो एलिमेंट्स तो लाने पड़ेंगे ना, जो जुड़ने वाले एलिमेंट्स हैं। तो बट नेचुरल है कि जो प्रेम है वो जुड़ने वाला एलिमेंट होता है, लेकिन यहां जिसमें प्रेम की बात कर रहा हूं उसे आप बिल्कुल रोमांटिक प्रेम के संदर्भ में मत लीजिएगा, मैं व्यापक संदर्भ की बात कर रहा हूं, कि व्यापक संदर्भों की प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। बट नेचुरल है कि जो मन, जो चेतना पॉजिटिव तरीके से जितना ज्यादा सोचेगी उसमें उतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की संभावनाएं होंगी, और इसके ठीक विपरीत हम नकारात्मकता से अपने आप को जितनी ज्यादा दूर रख सकेंगे उतनी ही ज्यादा सकारात्मकता के नजदीक पहुंच सकेंगे, और उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर फिर वो जो स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसके जनरेट होने की संभावना बनेगी। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज के जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस है उसमें देखिए मूलतः 5 पॉइंट्स बताए हैं। पहले पॉइंट्स के अंतर्गत मैंने एनर्जी के कुछ सिद्धांत आपको बताए हैं, 3-4 सिद्धांत बताए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट 4 पॉइंट में मैंने जो एनर्जी के चारों चैनल्स हैं उनके बारे में बताने की कुछ कोशिश की है कि कैसे आप अपने उन एनर्जीज के चैनल्स को ओपन अप कर सकते हैं। तो मित्रों, फिर से मैं दोहराऊंगा कि वो नॉब की तरह है गैस चूल्हे की, आप उन्हें थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, हो सकता है कि वो अभी जो स्विच है वो थोड़ा सा जाम हो गया हो, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, चट की आवाज भी आएगी, दिक्कतें भी होंगी, कुछ खुलेंगे भी नहीं, लेकिन जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें होने लगेंगी और फिर आपकी जो स्थिति होगी वो डिफरेंट, डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो अलग तरीके की होगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही मैं अब इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को, आज के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को समाप्त करने की आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।